हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HMH की बात रोहित पवाड़ के साथ पॉडकास्ट में। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमें कौन सी सेटिंग्स करनी चाहिए। अगर आपने एक नया नया वर्डप्रेस ब्लॉग अभी बनाया है उसमें बहुत सी डिफॉल्ट सेटिंग्स आती है या फिर कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है जिन्हें हमें तुरंत चेंज करने की जरूरत होती है या फिर कुछ हमें हमारे अकॉर्डिंग उसको सेट करना होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो उनको ध्यान ही नहीं देते और वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो मैं पॉइंट आपको अभी बताने वाला हूँ, ये आपने बिल्कुल नया नया वर्डप्रेस ब्लॉग जब इंस्टॉल किया है उसके तुरंत बात करनी होती है। तो आप इस पॉडकास्ट को लास्ट तक सुन लीजिए, भले आपका ब्लॉग पुराना है फिर भी आप जान लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसमें से कुछ चीज भूल रहे हो और आपने वो अभी तक नहीं की हो, तो आप उसको अभी भी कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वर्डप्रेस का वो होता है एडमिन, तो आप उसको डिलीट करके अपना एक दूसरा यूजर बनाए जिसमें आप अपना उसका यूजर नेम कुछ ऐसा रखें जो कोई आसानी से गेस न कर पाए। ये वर्डप्रेस की सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है और वर्डप्रेस की सिक्योरिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे मैंने अपनी पिछली पॉडकास्ट में बात की है, तो आप वो जाके भी जरूर सुने जिसमें मैंने 20 पॉइंट बताए हैं वर्डप्रेस सिक्योरिटी के लिए जिनको हम इंप्लीमेंट करके अपनी वर्डप्रेस की सिक्योरिटी बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। और अगर बात करें कि नया यूजर बनाकर पुराने यूजर को कैसे डिलीट करना है, तो उसके लिए सिंपल आपको साइड में जो मेन्यू है उसमें आपको एक यूजर का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाने के बाद आपको एड न्यू यूजर पर जाना है, वहां पर कोई भी यूजर नेम सेट करना है जो कोई गेस न कर पाए और अपनी पूरी डिटेल उसमें वहां पर सबमिट करने के बाद उसको क्रिएट करना है। उसके बाद आपको लॉग आउट करके अपना जो नया यूजर है उसमें लॉग इन करना है। ध्यान रहे आपने जो नया यूजर ऐड किया है उसको भी एडमिनिस्ट्रेटर ही बनाना है। उसके बाद जो आपका पुराना यूजर था जिसमें एडमिन यूजर नेम है उसको आप सिंपल डिलीट कर दीजिए। सेकेंड है वर्डप्रेस का टाइटल टैगलाइंस वगैरह अपडेट करें और जो भी टाइम जोन वगैरह है वो अपडेट करें। इसके लिए सिंपल आपको वर्डप्रेस की सेटिंग में जाना होगा, उसके बाद वहां पर आप जनरल मिल जाएंगे, तो वहां पर आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें साइट टाइटल टैगलाइन और जो भी टाइम जोन है आप वो सेट करके उसको सेव कर दीजिए, तो जिससे आपकी जो साइट का जो डिफॉल्ट जो भी नाम और जो उसकी टैगलाइन है वो सेट हो जाएगी। थर्ड है डिफॉल्ट कंटेंट जो तभी है उसको आपको डिलीट करना है। जैसे जब भी हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक डेमो पोस्ट आती है, एक डेमो पेज आता है, सिंपल आप पेज सेक्शन में जाकर और जो भी पोस्ट है उस सेक्शन में जाके जो भी डिफॉल्ट है उनको डिलीट कर दीजिए क्योंकि हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद फोर्थ है हमें अपने वर्डप्रेस की परमालिंक सेट करनी है। जो सबसे पहले डिफॉल्ट परमालिंक आती है वो हमारी वेबसाइट का नाम स्लैश पी इक्वल टू कोई भी नंबर, इस टाइप से हमारी पोस्ट का यूआरएल आता है अगर हम उसको सेट नहीं करते हैं तो हमें इसको सेट करना है वेबसाइट का नेम स्लैश सैंपल पोस्ट। सैंपल पोस्ट से मतलब है जो हमारी पोस्ट में हम अपना परमालिंक सेट करेंगे वो आएगा वहां पर उसके बाद, क्योंकि अगर हम वो सेट नहीं करेंगे तो वहां पर कुछ और भी आ सकता है, तो वो SEO के नजरिए से भी ठीक नहीं है, तो आपको ये सेट करना है। फिफ्थ है केस प्लगइन इंस्टॉल करें। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत इसलिए है कि अगर हमें अपनी वेबसाइट को फास्ट लोड कराना है तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है, जिसकी मदद से जो साइट की जो भी डाटा है जो बार बार अपडेट नहीं होता है, जैसे कुछ चीजें हैं जो हमेशा सेम रहती हैं, जैसे पोस्ट हम अपडेट करते हैं तो वो नई पोस्ट आ जाती है लेकिन कुछ पेज ऐसे हैं जो हमेशा सेम ही रहते हैं, तो उसमें हमारे जो वेबसाइट है वो फास्ट लोड हो जो के लिए हम इनका यूज करते हैं, तो इसके लिए आप W3 टोटल केस या फिर WP सुपर केस प्लगइन यूज कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके अगर आप चाहते आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट लोड हो तो आप WP रॉकेट प्लगइन भी यूज कर सकते हैं जो कि मैं करता हूं। मैं अभी आपको जितने भी ये पॉइंट बता रहा हूं या फिर जो भी कोई इंपॉर्टेंट टूल के बारे में आपको बता रहा हूं वो आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इनकी डिटेल में जानकारी मैंने hindimehal.com पर भी दी है, उसकी लिंक भी आपको यहां पर पॉडकास्ट में मिल जाएगी, तो आप वो जाकर जरूर चेक करें। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है या फिर मैं जो बता रहा हूं पॉइंट उनमें कोई सी स्टेप में आपको दिक्कत आ रही है कि ये कैसे होगा तो मैंने अपने आर्टिकल में इसको स्टेप बाय स्टेप भी दिया, वहां जाके भी देख सकते हैं। सिक्स्थ है रीडिंग सेटिंग को कॉन्फिगर करें। इसके लिए सिंपल आपको अपनी सेटिंग में जाने के बाद रीडिंग का जो ऑप्शन है उस पे जाना है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो है ब्लॉग पोस्ट शो कितनी करनी है, तो उसमें आप 10 सेट कर सकते हैं या फिर आपकी जो मर्जी आप वो सेट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो होम पेज पे जितनी टोटल पोस्ट जो दिखेंगी वो वहां पर दिखाई देंगी जितना भी आप सेट करेंगे। उसके बाद है सिंक्राइज फीड में आपको कितनी पोस्ट दिखानी है, जैसे जो RSS फीड में हमारी पोस्ट जो वहां पर दिखाई देती है वो कितनी दिखानी है, तो वो भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 10 यहाँ पे कर दीजिए। इसके बाद जो आर्टिकल है जो RSS फीड में दिखाई देते हैं वो आप चाहते हैं फुल दिखाई दे या फिर समरी थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे स्टार्टिंग का, तो वो आप यहां से सेट कर सकते हैं। इसकी जरूरत वहां पड़ती है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपके ब्लॉग को कहीं RSS फीड में सब्सक्राइब किया, जैसे ईमेल पर ही सब्सक्राइब किया, तो उनके पास आपकी पूरी पोस्ट जाएगी अगर आप करते हो फुल टेक्स्ट, या फिर आप समरी सिलेक्ट करते हो उनके पास थोड़ा सा हिस्सा जाएगा, उसके बाद नीचे लिंक आएगी उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जाएंगे। इसके नीचे एक और जो ऑप्शन आपको दिखेगा वो है सर्च इंजन विजिबिलिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको टिक नहीं करना है, अगर आप इसको टिक कर देंगे तो सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट नहीं आएगी। ध्यान से सुनिए एक और बार बता रहा हूं, अगर आप सर्च इंजन विजिबिलिटी जो ऑप्शन है इसको अगर आपने टिक कर दिया तो आपकी वेबसाइट सर्च इंजन से हट जाएगी, इसको आपको टिक नहीं करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में आए। इसको सिर्फ आप जब टिक करें, जब आपकी वेबसाइट अभी जैसे आप उसमें काम बाकी है, आप उसमें अभी काम कर रहे हो, तो आप इसको टिक कर सकते हो ताकि जो अधूरी वेबसाइट है वो गूगल में ना दिखाई दे। ये सब सेट करने के बाद आपको सेव कर देना है। फिर 7 है SEO प्लगइन को अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में इंस्टॉल करना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें अपने पोस्ट को अगर रैंक कराना है तो SEO की जरूरत तो पड़ेगी। के लिए आप योस्ट प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर और भी हैं जैसे ऑल इन वन SEO या फिर रैंक मैथ, ये प्लगइन भी आप यूज कर सकते हैं। इन प्लगइन का कैसे यूज करते हैं, हम आर्टिकल लिखते टाइम इनमें जो भी सिग्नल आते हैं उनको कैसे ग्रीन करते हैं, उसके बारे में मैंने पिछली पॉडकास्ट में बताया है, तो आप वो जाके भी जरूर सुने। उसमें मैंने पूरा बताया है कि हम कैसे एक फुल SEO ऑप्टिमाइज पोस्ट लिख सकते हैं SEO प्लगइन की मदद से। 8 है अपनी थीम अपलोड करें। जैसे आप देखेंगे डिफॉल्ट एक थीम आती है वर्डप्रेस की, जो सीधी सी बात है हमें मतलब इतनी ज्यादा पसंद तो नहीं आएगी, तो आप अपनी पसंद की जो भी आपकी थीम है, फ्री प्रीमियम जो भी आपने जहां से ली है, उसको आप अपलोड करें। सिंपल, उसके लिए आपको अपीयरेंस में जाने के बाद थीम में जाना है, फिर वहां पर एड न्यू पर क्लिक करके अपनी जो भी थीम है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप कोई सी प्रीमियम थीम मतलब जो पैसे में मिल रही है वो आप कहीं से जुगाड़ से फ्री में डाउनलोड कर रहे हो या फिर कहीं से फ्री में ले रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वो थीम यूज ना करें, क्योंकि उसमें वायरस हो सकते हैं या फिर कोई ऐसी स्क्रिप्ट हो सकती है जिससे आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है या फिर उसकी रैंक डाउन हो सकती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें। अगर आपके पास अभी इतने पैसे नहीं है कि आप इतने इन्वेस्टमेंट उसमें करो, तो आप कोई सी फ्री थीम स्टार्टिंग में यूज करो, उसके बाद आपके पास जब पैसे आ जाए जब आप प्रीमियम थीम ले सकते हो। 9th है इंपॉर्टेंट प्लगइन्स जितनी भी होती हैं वो यूज करें। इंपॉर्टेंट प्लगइन्स कौन कौन सी होती है उनकी पूरी लिस्ट मैंने बनाई है, हिंदी मेल पर वो शेयर की है, उसकी लिंक भी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंपल मैं अभी आपको बता दूं, जैसे SEO के लिए SEO योस्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं, केस के लिए आप W3 टोटल केस या फिर WP रॉकेट प्लगइन यूज कर सकते हैं, कॉन्टेंट फॉर्म के लिए कॉन्टेंट फॉर्म 7 प्लगइन यूज कर सकते हैं, इमेज को कंप्रेस करने के लिए WP स्मज यूज कर सकते हैं, अपने ब्लॉग की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, और स्पैम कमेंट को रोकने के लिए अकस्मत प्लगइन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और जो प्लगइन इंपॉर्टेंट हैं जो किस काम के लिए है वो मैंने डिटेल में पूरा शेयर किया है, तो उसको आप हिंदी मेल पर जाके चेक कर सकते हैं। 10th है बैकअप प्लगइन इंस्टॉल करें। अब ये मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं कि बैकअप हम क्यों लें। हम कोई भी काम कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, उस पर हमारे हाथ ही कुछ गलती हो जाए तो हम उसको आसानी से रिकवर कर पाए। मान लीजिए कोई फाइल है हमारे हाथ गलती से डिलीट हो गई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसके डिलीट करने के बाद हमारी वेबसाइट ओपन ही नहीं हुई, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा अगर हमारे पास उसका बैकअप नहीं होगा तो। और अगर हमारे पास बैकअप है तो सिंपल हम रिस्टोर करके उसको आसानी से जो चीजें हमने चेंज की है रिसेंट में वो हम उसको ठीक कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट कभी हैक भी हो गई तो हम उसको आसानी से पूरा डाटा उसको रिकवर करके वापस से उसको ऑन कर सकते हैं। तो इसलिए बैकअप लेना बहुत जरूरी है रेगुलर बेसिस पे। तो इसके लिए आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सारी फ्री प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं या फिर आप कोई भी प्लगइन यूज कर सकते हैं। जैसे ये कुछ प्लगइन है, बैकअप वर्डप्रेस, वर्डप्रेस बैकअप 2, ड्रॉपबॉक्स, बैक, WP अप, इन सब की लिंक आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, मैंने जो आर्टिकल शेयर किया है उसमें, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 11th है जो इतने भी अनयूज्ड प्लगइन या फिर जो थीम है उनको डिलीट करें। जैसे आप देखेंगे कि जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट 3-4 प्लगइन पहले से इंस्टॉल हो जाती है और थीम भी उसमें से पहले से इंस्टॉल हो जाती है, तो आपको वो सब डिलीट करना है, और जो आप नई अपलोड कर रहे हो जिनको आपको यूज करना है सिर्फ आपको वही उसमें रहने देना है। इसके अलावा जितने भी हैं जो आप यूज नहीं करने वाले हैं जो भी थीम और प्लगइन उनको आप डिलीट कर दें, उससे हमारा लोडिंग टाइम भी साइट का कम हो जाता है और सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। जितनी भी अनयूज्ड प्लगइन और थीम है हम उनको हटा देते हैं। तो 12th है यूजर प्रोफाइल को कंप्लीट करें। जैसे हम जब अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमारा यूजर नेम और नाम तो सेट हो जाता है लेकिन बाकी की डिटेल उसमें नहीं आती है, जैसे वेबसाइट का नाम या फिर हमारा बायो या फिर जितनी भी हमारी सोशल लिंक्स है वो, तो ये सब आपको अपने ऐड करनी है। उसके लिए सिंपल आपको यूजर में जाने के बाद यूअर प्रोफाइल जो ऑप्शन है उस पर जाना है, उसके बाद अपनी पूरी डिटेल वहां पर फिल करके उसको सेव करना है। ये सारी चीजें वहां दिखाई देगी, जैसे हम कोई भी पोस्ट पब्लिश करेंगे तो पोस्ट के नीचे ऑथर बॉक्स आता है, उसमें हमारी पूरी डिटेल आती है, तो वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये सब आपको अच्छे से सही तरीके से पूरा फिल करके उसको सेव करना है। 13 है अपने ब्लॉग में गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल को ऐड करें। सिंपल सी बात है, अगर गूगल एनालिटिक्स आप ऐड नहीं करेंगे तो आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे अपने डाटा को कि कौन से विजिटर कहाँ से आ रहे हैं, किस पेज पर कितने विजिटर आ रहे हैं, कितने लाइव विजिटर हमारी वेबसाइट पर है। ठीक उसी तरह सर्च कंसोल भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उसमें गूगल में हमारी वेबसाइट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कहीं पर कोई एरर तो नहीं आ रही है, या फिर कितने पोस्ट हमारी इंडेक्स है, या फिर किस किस कीवर्ड से हमारे ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा है, वो सब चीजें भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। गूगल सर्च कंसोल में भी कौन से इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो हमें करना चाहिए, उसके बारे में मैंने एक पोस्ट में पूरा बताया है, तो आप वो जाके भी चेक कर सकते हैं, इससे आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको क्या क्या करना है। 14 है आपको अबाउट अस पेज बनाना है। अपनी वेबसाइट का अबाउट अस पेज आपको बनाना है, वो कैसे बनाना है उसके बारे में मैंने डिटेल में शेयर किया है कि उसमें आपको क्या क्या ऐड करना चाहिए ताकि अच्छा अबाउट अस पेज बना सके। सिंपल आपको उसमें अपने बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट बनाने का मकसद क्या है, ये सब चीजें मतलब डिटेल में अच्छे तरीके से उसमें देनी है, और इसको आपको अपने मेन्यू में भी ऐड करना है ताकि आपके यूजर उसको एक्सेस कर पाए। 15 है आपको कॉन्टैक्ट अस पेज भी ऐड करना है। सिंपल कॉन्टैक्ट अस पेज अगर आपकी वेबसाइट में होगा तो कोई भी यूजर जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा वो उस फॉर्म को फिल करके आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। तो ये आप सब चीजें सेट करके अपने ब्लॉग को पूरा रेडी कर लें, उसके बाद फिर आप आगे सोचें कि हमें पोस्ट पब्लिश करना है। ये सब चीजें जब आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट होगी तो कोई विजिटर आएगा तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही बहुत अच्छा उनके सामने बनेगा, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट होगी। इसी के साथ आपको जो मेन्यू है अपने ब्लॉग की उसको भी अपडेट करना है, मतलब उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पेज है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले जो भी सेक्शन है आपके, वो आप उसमें ऐड करके उनकी मेन्यू को सही तरीके से सेट कर दें। तो वो चीजें भी कंप्लीट करने के बाद फिर आप कह सकते हैं कि आपका ब्लॉग पूरी तरीके से रेडी है, अब आप पोस्ट पब्लिश करने के लिए तैयार हो। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ब्लॉग में क्या क्या सेटिंग्स या फिर क्या क्या चीजें करनी है, उसके बाद आपका ब्लॉग पूरा तरीके से कंप्लीट होगा। क्योंकि बहुत लोगों को तो ये समझ ही नहीं आता कि उन्हें ब्लॉग इंस्टॉल हो गया उसके बाद उन्हें आगे क्या करना है। तो ये जानकारी उन सभी के लिए थी जिन्हें इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना था। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम अपने ब्लॉग को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या बेसिक सेटिंग्स होती है जो हमें करनी होती है। अभी भी आपका कोई डाउट है किसी स्टेप में या फिर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको डिटेल में उसके बारे में भी बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, जब तक के लिए गुड बाय।